नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि नागरिक जब चाहे इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। अब तक 1,40,00,000 उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। इस बीच लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी ना तो संभव है और ना ही होगी। नागरिक वित्त साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के कारण 23,00,000 से अधिक शिकायतों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई गई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वित्त धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए ये प्रणाली 2021 में शुरू की गई थी। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 संचालित है। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये कोई नया कानून नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि ये उपकर नहीं है बल्कि ये एक उत्पाद शुल्क है जो जीएसटी लागू होने से पहले लगा करता था।
When GST was introduced in 2017,
2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अपने उत्पाद शुल्क के अधिकार छोड़ दिए और इसे जीएसटी परिषद को दे दिया ताकि परिषद क्षतिपूर्ति उपकर लगा सके। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के स्थान पर वसूला जाने वाला क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी में आने के बाद से शुरुआती वर्षों में क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को दिया गया।
फॉर द इनिशियल ईयर्स व्हेन दे कम इनटू द जीएसटी,
विधेयक के अंतर्गत कच्चे तंबाकू और बने हुए तंबाकू से निर्मित उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। ये यात्रा भारत और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव आज नई दिल्ली में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि दोनों नेता इस बैठक के दौरान रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यूरोपीय संघ का 40 सदस्य वार्ता दल आज नई दिल्ली पहुंचेगा, जो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर गहन चर्चा करेगा। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्विन ने भारत के विश्व वार्षिक सम्मेलन में कहा कि वर्तमान वार्ताएं मौलिक रूप से नए चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसे यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का दूसरा चरण कहा जाएगा। भारतीय वायुसेना के एक विमान ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका को एक बेली ब्रिज और 500 जल शोधन किट पहुंचाए। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पुल चक्रवात दित्वा के कारण शेष देश से कटे हुए इलाकों में सड़क संपर्क बहाल करने में सहायता करेगा। रायपुर में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत के 359 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 4 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।